राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की बहुत पक्षों से आलोचना की गई है तथा भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा इनको संविधान में शामिल करने के विरुद्ध भिन्न भिन्न विचार प्रकट किए गए हैं। डॉक्टर आइवर जेनिंग्स के अनुसार इन सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं है। दीज प्रिंसिपल्स आर ऑफ नो इम्पोर्टेंस, डॉक्टर आइवर जेनिंग्स। डॉक्टर वियर के अनुसार ये केवल उद्देश्यों तथा इच्छाओं का घोषणा पत्र ही है। दीज आर मियर मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस, के सी वियर। प्रोफेसर के टी शाह के अनुसार निर्देशक सिद्धांत उस चेक के समान है जिसका भुगतान करना बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर लाइक ए चेक पेएबल बाई ए बैंक एट इट्स ओन कन्वीनियंस, प्रोफेसर के टी शाह। श्री नसीरुद्दीन ने निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, ये सिद्धांत नए साल के चढ़ने पर किए गए वायदों की भांति हैं जिन्हें जनवरी के दूसरे दिन ही तोड़ दिया जाता है। दीज प्रिंसिपल आर नॉट बेटर देन न्यू ईयर्स प्रोमिसेज एंड रेजोल्यूशंस विच आर ब्रोकन ऑन द सेकेंड डे ऑफ जनवरी, नसीरुद्दीन। आलोचना निम्नलिखित आधार पर की गई है। एक, ये न्याय संगत नहीं है, दीज आर नॉट जस्टिसिएबल। निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना का सबसे बड़ा कारण यह है कि इनके पीछे कानूनी शक्ति नहीं है तथा इनको लागू करवाने के लिए कानून अथवा न्यायालय की शरण नहीं ली जा सकती। इनको लागू करना या ना करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। संविधान की धारा 37 आर्टिकल 37 में स्पष्ट कहा गया है कि संविधान के इस भाग में शामिल व्यवस्थाओं को न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकेगा। द प्रोविजन्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सिएबल एनी कोर्ट, आर्टिकल 37। दो, नैतिक नियमों के अतिरिक्त कुछ नहीं है, नो मोर देन मॉरल प्रिंसिपल्स। निर्देशक सिद्धांत उन नैतिक नियमों के समान है जिनका मानना या न मानना व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। स्मरण रहे, संविधान कोई नैतिक पुस्तक नहीं है जिसमें ऐसे नैतिक सिद्धांतों को कोई स्थान दिया जाए। ये एक कानूनी मसौदा है तथा इसमें वही व्यवस्थाएं रखी जानी चाहिए जो कानून की नजरों में उचित हो। तीन, सिद्धांतों का उचित वर्गीकरण नहीं किया गया, नो प्रॉपर क्लासिफिकेशन इज मेड। कई आलोचकों का विचार है कि इन सिद्धांतों का ठीक प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया गया। कई महत्ता वाले सिद्धांतों को इस अध्याय में शामिल नहीं किया गया। श्रीनिवासन के विचारानुसार इन निर्देशों का ना तो ठीक प्रकार से वर्गीकरण ही किया गया है तथा ना ही इन्हें तर्कपूर्ण क्रम ही दिया गया है। इस घोषणा में महत्वहीन विषयों को महत्वपूर्ण आर्थिक विषयों के साथ जोड़ दिया गया है। दीज डायरेक्टिव्स आर नाइदर प्रॉपरली क्लासिफाइड नॉर लॉजिकली अरेंज्ड। दीज डेक्लरेशंस मिक्स अप रिलेटिवली अन इम्पॉर्टेंट इश्यूज विद द मोस्ट वाइटल इकोनॉमिक एंड सोशल क्वेश्चंस, श्रीनिवासन। चार, कुछ निर्देशक सिद्धांत व्यवहारिक नहीं है, सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट प्रैक्टिकेबल। इस अध्याय में कुछ ऐसे सिद्धांत शामिल किए गए हैं जो कि व्यवहारिक रूप में लागू नहीं किए जा सकते। उदाहरणतः नशाबंदी के सिद्धांत को अलग अलग राज्यों में अलग अलग समयों पर लागू किए जाने का यत्न किया गया परंतु इसमें सफलता नहीं मिली। इसके विपरीत बहुत सारी सामाजिक तथा कानूनी बीमारियां पैदा हुई हैं। एक तरफ राज्य की आय कम होती है तथा दूसरी ओर लोग घरों में शराब निकालकर बेचते हैं तथा इस प्रकार कानून भंग करते हैं। ऐसे सिद्धांतों को संविधान में रखने का कोई लाभ नहीं है। पेज 110। पांच, ये स्वभाव में विदेशी हैं, दीज आर फॉरन इन नेचर। ये सिद्धांत आयरलैंड के 1937 के संविधान से प्रभावित होकर भारत के संविधान में शामिल किए गए हैं परंतु ये आवश्यक नहीं कि जो व्यवस्थाएं आयरलैंड में उचित हों वही भारत में भी ठीक होंगी। भारत की समस्याएं और आवश्यकताएं आयरलैंड की समस्याओं तथा आवश्यकताओं से भिन्न भिन्न हैं। छह, ये राज्य की प्रभु सत्ता के सिद्धांत के विपरीत हैं, अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट सॉवरेनिटी। हम सभी जानते हैं कि राज्य प्रभु सत्ता सम्पन्न होता है तथा राज्य सभी को आदेश दे सकता है परंतु राज्य को कोई आदेश नहीं दे सकता। निर्देशक सिद्धांत राज्य को आदेश देते हैं, जो बहुत ही अजीब तथा हास्यास्पद बात लगती है। सात, इन सिद्धांतों को संविधान में शामिल करना तर्क रहित है। इट इज इलॉजिकल टू इंक्लूड दीज प्रिंसिपल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 20वीं शताब्दी के मध्य में जब हमने संविधान का निर्माण किया तो इन सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया गया था, परंतु इसका क्या प्रमाण है कि 21वीं शताब्दी के अंत में आने वाली नस्लें इन सिद्धांतों को पसंद करेंगी। उनकी पसंद तथा प्राथमिकता स्वाभाविक ही इनसे भिन्न होंगी, इसलिए इन सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया जाना तर्कहीन है। आठ, ये लोगों को गुमराह करने के लिए शरारती सिद्धांत हैं। दीज आर मिस्चीवियस प्रिंसिपल्स टू मिसलीड पीपल। ये सिद्धांत भोले भाले लोगों को गुमराह करने तथा उन्हें अपने पीछे लगाने के लिए शरारती राजनीतिज्ञों द्वारा संविधान में शामिल किए गए हैं। इनके अनुसार भारत की अशिक्षित जनता को एक काल्पनिक स्वर्ग का झूठा विश्वास दिलाया गया है तथा उज्जवल भविष्य की झूठी तसल्लियां दी गई हैं। नौ, ये दोहराए गए हैं। दीज आर रिपीटेड। ऐसे उच्च आदर्श ही संविधान की प्रस्तावना में भी शामिल किए गए हैं, इसलिए इनको बार बार दोहराए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रस्तावना भी न्यायसंगत नहीं है तथा निर्देशक सिद्धांत भी न्यायसंगत नहीं है। दस, ये पिछड़ेपन का प्रतीक है। दीज आर साइन ऑफ बैकवर्डनेस। इन सिद्धांतों को पढ़कर हमें अपने पिछड़ेपन का ज्ञान होता है, क्योंकि ये सिद्धांत आयरलैंड के लिए 20वीं शताब्दी के शुरू में महत्वपूर्ण थे, जबकि हमारे लिए ये अभी भी आदर्श ही है। दूसरे, ये सिद्धांत संविधान के लागू करते समय यद्यपि 62 वर्ष पहले भी इसी प्रकार के थे तथा आज भी उसी प्रकार ही संविधान में सुशोभित है। 11, ये संवैधानिक विवादों का कारण है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। यद्यपि संसद द्वारा कई ऐसे संवैधानिक संशोधन किए गए जिनका उद्देश्य निर्देशक सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देना था, परंतु न्यायालयों ने ऐसे संशोधनों को अस्वीकृत कर दिया। इस कारण से कई बार संसद, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में संघर्ष होते होते बचा है। यह विवाद अब भी किसी समय फिर खड़ा हो सकता है, जो कि खतरनाक सिद्ध हो सकता है। 12, इनको व्यवहारिक रूप देने की विधियों का वर्णन नहीं। नो मेंशन ऑफ मेथड्स टू इम्प्लीमेंट दीज। संविधान में इन सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया गया है, परंतु इन्हें व्यवहारिक रूप देने के लिए किसी भी विधि का वर्णन नहीं किया गया। इस प्रकार ये बिल्कुल एक मजाक ही लगते हैं, वास्तविकता नहीं। यदि संविधान निर्माता इन्हें लागू किए जाने के साधनों की व्यवस्था करते तो उन्हें इस सच्चाई का ज्ञान हो जाना था कि इनमें से कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो वास्तविकता से दूर हैं और पवित्र भावनाओं के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।